တော်ဘတ်တော်ရေရင်းဘာသုဒ္ဓံဘာယံဟိုနမောဘဂဝတိဘာသုဒ္ဓံဟိုနမောဘဂဝတိဘာသုဒ္ဓံဂရန္ထရာသီလံဓမ္မဂိတသရူပဒိုင်9တုတ်ဆန်ချ अवजानं तुमाहं बुधा मानुते तन्मात्रितं परं भावं न जानन्तो मम भूतं महेश्वरम् अवजानं तुमाहं बुधा मानुते तन्मात्रितं परम्भावं मजानन्तो मम भूतं महेश्वरम् अवजानन्ति मां बुधा मानुषीन्तं मातृतं परम्भावं मजानन्तो मम भूतं महेश्वरम् अथ सद्दार बोलिए सिद्धार्थ के पीछे बोले अवजानन्ति तो पहाच करते हैं माम मुझको मुधाह मूर्ख व्यक्ति मानसी मनुष्य रूप में तमं शरीर आश्रितम मानते हुए परम दिव्य भावम स्वभाव को अजानन्तः न जानते हुए मम मेरा भूतं प्रत्येक वस्तु का महाईश्वरम परम स्वामी। अनुवाद मेरे पीछे बोले जब मैं मनुष्य रूप में अंकुरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले हम समझेंगे भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं। बहुत सरल है फिर भी शब्द क्या है भगवान के अवजानन्ति। अवजानन्ति का मतलब है कि जानन्ति का मतलब जानते हैं और अव का मतलब है कम तुच्छ, अव का मतलब अवर, तो मुझको जो है तुच्छ मानते हैं। अवजानन्ति का मतलब है जानन्ति से कम, जितना जानना चाहिए से कम समझते हैं। अवजानन्ति अवजानन्ति मान मूढ़ा मूर्ख मुझको मानसीन तन्मात्रितम मनुष्य शरीर के आश्रित मानते हैं कि मैंने मनुष्य शरीर का आश्रय लिया है। हम लोग तो मनुष्य का शरीर आश्रय हमने मनुष्य के शरीर का आश्रय लिया है। मनुष्य शरीर नौका के समान है जो भव सागर को पार करेगी। हमारे लिए तो ठीक है, कह सकते भाई हमने मनुष्य के शरीर का आश्रय लिया है और मनुष्य शरीर नौका के समान है, अगर सही उपयोग किया जाए तो भव समुद्र को पार कर आ सकती है। लेकिन भगवान भगवान को सोचते हैं कि मनुष्य शरीर का आश्रय लिया है। मानसीन तन्मात्रितं परम भावम अजानन्तो, अजानन्तो माने नहीं जानते। अवजानन्ति गलत समझते हैं मुझको, अजानन्तो परम भावम परमेश्वर के भाव को नहीं जानते। मम भूत महेश्वरम मैं समस्त प्राणियों का महाईश्वर हूँ, इस बात को नहीं जानते। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य तीन पेज का है, काफी लंबा तात्पर्य है, तो हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे इस तात्पर्य को। तो पढ़ रहे हैं इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से स्पष्ट है कि यदि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन पालन तथा संहार करता हो वो मनुष्य नहीं हो सकता। तो ये बात जो है पिछले श्लोक में भी भगवान ने बताई, पिछले श्लोक में भगवान ने बताई क्या कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चरअचर सब शरीरों का निर्माण करती है। मेरी अध्यक्षता में भगवान की अध्यक्षता में कर तो कोई मनुष्य थोड़ी हो सकता है। पूरी प्रकृति का नियंत्रण करने वाला, पूरी प्रकृति का नियंत्रण करने वाला, और प्रकृति कितने जीवों के शरीर बनाती है और हर समय बना रही है, कितने गिन भी नहीं सकते हैं, चरअचर उत्पन्न कर रही है। और ये कृष्ण की अध्यक्षता में सब कार्य हो रहा है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन पालन और संहार करता हो वो मनुष्य नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते हैं। कहा जाता है, कहते हैं, खुल करके कहते हैं कि भाई कृष्ण जो है हमारी तरह एक मनुष्य थे, हाँ उनके अंदर हमसे तो ज्यादा गुण थे, जैसे विवेकानंद हुए, गांधी जी हुए, उसी प्रकार से कृष्ण जी एक महापुरुष है। तो ये भी कृष्ण की निंदा है, वो तो सोचते अपने हिसाब से कि हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं कि भाई कृष्ण जो है अच्छे व्यक्ति थे, कोई गुणवान व्यक्ति थे और कोई महापुरुष थे, गांधी जी जैसे, विवेकानंद जैसे। ये क्या है, प्रशंसा है, निंदा? निंदा है, कृष्ण की निंदा है। तो कृपा देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के तरह और कुछ नहीं मानते। पुरुष का मतलब मनुष्य, हमारी तरह मनुष्य है, भाई हमारे अंदर जितनी शक्तियां हैं उनके अंदर ज्यादा है शक्तियां, लेकिन वो भी एक जीव है, एक मनुष्य है कृष्ण जी। तो ये निंदा है, और थोड़ी निंदा नहीं, बहुत ज्यादा निंदा। कुछ तो जो ना मतलब इतनी निंदा करते हैं कि अपने से भी ज्यादा बुरा मानते हैं कृष्ण को, है ना, सबसे ज्यादा बुरा मानते हैं कृष्ण, सबसे ज्यादा बुरे हैं, वो तो बहुत ज्यादा है। लेकिन ये भी जो है ना मानना कि भाई कृष्ण हाँ अच्छे हैं, हमसे अच्छे हैं, ये भी मतलब पर्याप्त नहीं है कृष्ण के, कृष्ण को ऐसे जो है मतलब पर्याप्त नहीं है जानना। तो प्रभुपाद कहते हैं वसुत हवे आदि परम पुरुष है, आदि परम पुरुष है, जैसे जैसे कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है ईश्वर परम कृष्ण परम ईश्वर है। इसलिए भगवान कहते हैं मम भूत महेश्वरम, परम भावम अजानंतो, परम भाव को नहीं जानते हैं, मम भूत महेश्वरम। तो प्रभुपाल ईश्वर परम कृष्ण ये ब्रह्म संहिता में, ब्रह्म संहिता में प्रारंभ ही होता है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आगे। ईश्वर यह नियंता अनेक है। आप प्रभुपाल क्या करें कि भगवान तो कहते हैं मम भूत महेश्वरम, महेश्वरम ईश्वर नहीं, महेश्वरम, या ब्रह्म संहिता में परमेश्वरम, परम ईश्वर, केवल ईश्वर नहीं। तो प्रबंधते हैं ईश्वर या नियंत्रता अनेक है, अगर कृष्ण को ईश्वर कहा जाए तो ये जो पर्याप्त नहीं है, ईश्वर या नियंत्रता अनेक है और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंधकारियों का कोई न कोई निर्देशक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर मंत्री होता है, फिर उसके भी ऊपर राष्ट्रपति होता है। इनमें से हर एक नियंत्रक होता है, किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है, सब ईश्वर। अब राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति भी नियंत्रित है, है? अगर आप कहेंगे नहीं राष्ट्रपति सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कोई नहीं है, तो नहीं है। कि चुनाव चुनाव में फिर वो भी है ना, उसका भी जो है सत्ता कट जाएगा। तो कोई भी जो है मतलब नियंत्रक नहीं है, सब नियंत्रित है। इनमें से हर एक नियंत्रक होता है, किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता है, परम ईश्वर, मतलब जिनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं, एक कृष्ण ही है। ऐसे कहा कि कोई भी ईश्वर परम ईश्वर नहीं है, ईश्वर है, नियंत्रण कर रहा है, तो उसके ऊपर भी कुछ दंडा लगा हुआ है। परम ईश्वर कृष्ण है, ठीक है ना, और कोई नहीं है, परम ईश्वर कृष्ण ही है। तो हर व्यक्ति के ऊपर जो है नियंत्रण है, कोई भी जो है मतलब परमेश्वर नहीं है। निस्संदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई कई निर्देशक होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता है, ईश्वर परम कृष्ण तथा उनका शरीर सच्चिदानंद रूप अर्थात अभौतिक होता है, सच्चिदानंद रूप है। कृष्ण का रूप कैसा है, सच्चिदानंद, तीन चीजें हैं, सत्य मतलब सनातन, चित्त का मतलब ज्ञान, और आनंद का मतलब सब प्रकार के रस, तो कृष्ण के शरीर में अभौतिक है, भौतिक नहीं है शरीर। पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। पिछले श्लोकों में तो अगर एक ही श्लोक देखें, पिछला श्लोक तो उसमें क्या था, कैसे कार्य है, क्योंकि अधिष्ठान प्रकृति सर्वतस्थ प्राणियों का निर्माण कर रही है। तो कहते हैं ये भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते हैं, कि कृष्ण का शरीर अगर भौतिक हो तो कुछ लोग यह मानते हैं कृष्ण का शरीर भौतिक है तो भी बहुत अज्ञान है। भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं होते, कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है, यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं है, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। तो मूर्ख लोग मनुष्य मानते हैं और कृष्ण भी इस बात की चिंता नहीं करते कि मूर्ख लोग मुझे मनुष्य मानते हैं तो मैं जो है उनको समझाऊं दिखाऊं कि मैं मनुष्य नहीं हूं, किसी को चिंता नहीं है। कृष्ण भी जो है अपने को छिपाए, तो जो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है वही कृष्ण को समझ पाता है कि वे भगवान है। जैसे कि प्रधानमंत्री को अगर कोई नहीं जानता है तो प्रधानमंत्री को थोड़ी चिंता होती है कि ये जो मजदूर हैं ये लोग मुझे नहीं जानते तो मैं इनको बताऊं कि भाई तुम मुझे नहीं जानते, जान लो कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। उसका थोड़े काम कोई रोका हुआ है। तो मूर्ख लोग कृष्ण को जो है परमेश्वर नहीं मानते, सामान्य मनुष्य मानते हैं, या मनुष्य से कुछ बढ़ करके मानते हैं या और नीचे मानते हैं, कुछ ही मानते हैं। तो कृष्ण को इस बात की चिंता नहीं है कि वे क्यों मानते हैं, उनको नहीं मानना चाहिए, भाई बताओ उनको मेरे बारे में बताओ। तो कृष्ण को इससे चिंता नहीं है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, हाँ उनका शरीर यहाँ मानसिंह कहा गया है क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में हुई है, सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय। मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप है। ये गोपाल तापनी उपनिषद 1:1। वेदों में ऐसे अन्य वर्णन भी है, अनेकम गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद हैं। गोविंद के दो अर्थ हैं, गोविंद के दो अर्थ हैं। गो का एक अर्थ होता है गाय, दूसरा अर्थ होता है इंद्रियां। और इंद्र, इंद्र का मतलब है जो आनंद प्रदान करे, तो गमों का आनंद प्रदान करें, इंद्रियों का आनंद प्रदान करें। तो भक्तों की सभी इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं कृष्ण, है ना, इसी गोविंद कहलाते हैं। और गमों को तो आनंद प्रदान करते हैं गोविंद। फिर सच्चिदानंद विग्रहम तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है, गोपाल तापनी उपनिषद 1:35। भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे ही कथा कथित विद्वान तथा भगवद गीता के टीकाकार हैं जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। अब यहाँ तो पर जो हमें समझा रहे हैं ये बड़ी चेतावनी है, हमें समझना चाहिए। गीता के भी टीकाकार है, गीता के भी विद्वान है। तो ऐसे बहुत से तथाकथित विद्वान या भगवदगीता के टीकाकार हैं जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। तो मतलब ये नहीं सोचना कि नहीं गीता की टीका है, गीता की टीका लिखी है तो जितनी गीता की टीका लिखी है वो सब जो है सही है, ऐसा नहीं है। गीता की बहुत सी टीकाएं हैं, लेकिन गीता की वही टीकाएं सही हैं जो परंपरा के अनुसार, जैसे प्रभुपाद ने ये गीता की टीका लिखी है, जैसे परंपरा दी है, परंपरा दी है, और ये कौन सी परंपरा है, ब्रह्म संप्रदाय। तो कृष्ण से ही जो है विशिष्ट परंपरा चली आ रही है, उसी में उन्होंने गीता की व्याख्या की उस परंपरा के अनुसार। तो अगर परंपरा के अनुसार नहीं है टीका तो चाहे कोई व्यक्ति जितना भी विद्वान हो लेकिन वो जो है सही नहीं है। और तरह तरह की व्याख्याएं भी करते हैं गीता की लेकिन वो सही नहीं है। चाहे कोई बहुत बड़ा नेता हो या कोई बहुत बड़ा प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, गीता की टीका अगर कर रहा है उसकी कोई परंपरा नहीं है तो उसकी टीका सही नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं जैसे अनेक तथाकथित विद्वान और भगवदगीता की टीकाकार है जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं, गीता की टीका नहीं उनका उपहास करते, गीता की टीका नहीं उपहास करते हैं। जैसे भारत के पहले राष्ट्रपति राधा कृष्ण हुए तो उन्होंने गीता की टीका लिखी, जहाँ कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मान्यकम शरणम व्रज, सद्धर्मो त्याज्य मेरी शरण में आओ, तो उस टीका में लिख रहे हैं कि हमें किसी की शरण नहीं लेना, ऐसे ऐसे विद्वान है क्योंकि परंपरा ही नहीं है। तो हमें कृष्ण की शरण नहीं लेना, कृष्ण के अंदर कोई अजन्मा वस्तु है उसकी शरण लेना है। अब कृष्ण के अंदर कुछ अलग है और कृष्ण के बाहर कुछ अलग है, एक अज्ञान है। कृष्ण के अंदर और बाहर में कोई अंतर नहीं, हमारे अंदर और बाहर में अंतर है। अंदर आत्मा है जो अविनाशी है और जो बाहर है शरीर वो नश्वर है, लेकिन कृष्ण के अंदर बाहर में कोई अंतर नहीं है। तो ये अज्ञानी है, ये गीता की टीका लिख रहे हैं, ये भी नहीं जान रहे गीता कृष्ण के शरीर के अंदर और बाहर कुछ अंतर नहीं है, कृष्ण के शरीर में और आत्मा में अंतर नहीं है। तो यहाँ तो लेते हैं कि कृष्ण को सामान्य पुरुष समझकर उनका उपहास करते हैं, भले ही अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो। तो कृष्ण पुण्य के कारण उनका जो है बचपन से ही बड़े अच्छे उनके संस्कार है और समझने की शक्ति है काफी, और शास्त्रों का जो है उन्होंने अभ्यास कर लिया काफी अच्छा, या संस्कृत के श्लोकों का भी काफी अभ्यास कर लिया, लेकिन तो भी वे कृष्ण को नहीं समझते। जैसे एक श्लोक है, पारंग विजेदानाम सर्व शास्त्रार्थ विद्यति ये न सर्वेश्वरे भक्त विद्या प्रोत्साहन, कि समस्त वेदों का उसने पार पा लिया और सब शास्त्रों के अर्थ को भी जान लिया, ये तो भी कृष्ण का भक्त नहीं है तो उसको क्या है समझो, तन विद्या पुरुषाधम, पुरुषों में अधम है, मनुष्य में अधम है। तो ऐसे लोग जो है कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं, भले ही भले अपने पूर्व पुण्य के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण होती है। कैसी धारणा? सामान्य पुरुष, कृष्ण को सामान्य पुरुष समझना, या कृष्ण के शरीर को भौतिक मानना, कृष्ण का शरीर भी हमारे शरीर की तरह पांच भौतिक है ये मानना, इसीलिए वो मूढ़ कहलाता है। मूढ़, तो भगवान कह रहे हैं अब जानते माम मूढ़ा, कि मूर्ख लोग मुझको नहीं जानते कि मैं परमेश्वर हूँ। तो यहाँ पर भगवान का इशारा उनके लिए जो गीता की टीका कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं गीता की टीका करने वाले जो विद्वान है उनको भी भगवान मूर्ख ही कह रहे हैं, कि गीता की भी टीका कर रहे हैं लेकिन मेरा जो है वो तब तो नहीं जानते। आगे कहो पढ़ते हैं, इसलिए वह मूर्ख कहलाता है क्योंकि मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। ऐसे मूर्ख कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुण कर्म तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अप्रसन्न होते हैं। वे नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद, तीन चीजें हैं, सच्चित आनंद, सत्य का मतलब सनातन है ना, और चित का मतलब पूर्ण ज्ञान, और आनंद पूर्ण आनंद, सनातन है और पूर्ण ज्ञान पूर्ण आनंद, वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि वे कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते इसलिए उनका उपहास करते हैं। आगे ये मूल ये भी नहीं जानते कि जगत में भगवान का अवतरण उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है, वे भौतिक शक्ति माया के स्वामी हैं। हम लोग जन्म लेते हैं भौतिक शक्ति के प्रभाव में और हमको भौतिक शरीर प्राप्त होता है, लेकिन कृष्ण का शरीर भौतिक शक्ति के प्रभाव नहीं होता है, उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है, वे भौतिक शक्ति के स्वामी है। जैसा कि अनेक स्थलों में कहा जा चुका है, मम माया द्वत्या, भगवान का दावा है कि यदि भौतिक शक्ति अत्यंत बल है किंतु वो उनके बस में रहती है, तो भगवान की जो माया है तो उससे कोई भी छोड़ नहीं सकता, मुक्त नहीं हो सकता, सब बंधे हैं उनकी माया से। लेकिन कृष्ण नहीं बंधे उस माया से, क्योंकि वो कृष्ण की ही माया है और कृष्ण के शरण में जो आए तो माया से अपना छूट जाएंगे, कोई दूसरा उपाय नहीं है माया से छूटने का। माया किसी से रिश्वत नहीं लेती, ऐसे जेल में तो ऐसा हो जाता है ना कई बार कि जिनने को रिश्वत दो तो वो जो है जैसे किसी तरह निकाल देगा, ये माया थी नहीं है, रिश्वत नहीं लेती, क्योंकि कृष्ण की वो पूर्ण समर्पित शुद्ध भक्त है। तो आगे तो पढ़ गए हैं, और जो भी उनके शरण ग्रहण कर लेता है वो इस माया के बस से बाहर निकल आता है। यदि कृष्ण का शरणागत जी माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन पालन तथा संहार करता है, हम लोगों जैसा शरीर कैसे धारण कर सकता है? माया का शरीर, हम लोगों का जो शरीर है वो माया से बना है, तीन गुणों से बना है, भौतिक तत्वों से बना हुआ है, जब कृष्ण के अधीन है माया तो कृष्ण का शरीर कैसे माया से निर्मित हो सकता है, कृष्ण का शरीर कैसे भौतिक हो सकता है, कृष्ण का शरीर तीन गुणों से निर्मित कैसे हो सकता है? यहाँ पर ऊपर लिखते हैं, अतः कृष्ण जैसे ऐसी धारणा मूर्खता पूर्ण है। जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण को भगवान ना माने तब तक उसको गीता की टीका नहीं करना चाहिए, तब उसको गीता को समझाने का कोई अधिकार नहीं है, गीता पर चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये बड़े दुख की बात है कि ऐसे लोग गीता पर चर्चा करते हैं जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, और जहाँ कृष्ण कुछ कहते हैं गीता में ये है तो कृष्ण तो ये कहा, अरे मेरा विचार ये है, कृष्ण मूर्ख, आपके विचार का क्या महत्व है? जहाँ कृष्ण कुछ बात कह रहे हैं गीता में, आपके विचार का क्या महत्व है? मैं तो ये नहीं मानता, कृष्ण तो ये कहा, मैं ये नहीं मानता, मेरा विचार तो ये है, उसमें सुधार कर दे, मूर्ख है। कृष्ण की गीता है, कृष्ण के शब्द में कृष्ण का ये विचार है, हमारा विचार ये है, आप सबका अपना अपना विचार है, मूर्ख है। कृष्ण के विचार के सामने हमारा विचार क्या है? कुछ नहीं है। अपना विचार आप मिलाते हैं कृष्ण के विचारों में तो पूरा दूषित हो जाता है, सब दूषित हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद ने इसका नाम कर दिया भगवद्गीता थारू, कि अपने विचार नहीं मिलाए। तो इसीलिए इससे लोग कृष्ण के भक्त बन रहे हैं, कृष्ण के शरण दे रहे हैं। तो प्रभुपाद यही कहते थे कि मेरी अगर कुछ योग्यता है या मेरा कुछ गुण है तो यही कि मैंने अपने विचार इसमें नहीं मिलाए। तो वही शुद्ध भक्त होता है जो कृष्ण के विचारों को जो है शुद्ध रूप में देता है। तो आज प्रभुपाद कहते हैं, फिर भी मूर्ख व्यक्ति ये नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान कृष्ण समस्त परमाणुओं तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंत्रक किस तरह हो सकते हैं। सूक्ष्म है परमाणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु, तो प्रत्येक परमाणु का भी नियंत्रण करते हैं। और ब्रह्मांड सबसे बड़ी बहुत बड़ा आकार ब्रह्मांड का है, तो पूरे ब्रह्मांड का भी नियंत्रण करते हैं और सूक्ष्म परमाणु का भी नियंत्रण करते हैं कृष्ण। बृहत्तम तथा सूक्ष्मतम तो उनके विचार शक्ति से परे होते हैं, कोई नहीं सोच सकता। बृहत्तम माने सबसे बड़ा क्या है? ब्रह्मांड। और सूक्ष्मतम का मतलब सबसे छोटा परमाणु, तो उनके विचार शक्ति से परे हैं, वो नहीं विचार कर सकते, सोच नहीं सकते कि परमाणु कितना छोटा होता है और ब्रह्मांड कितना बड़ा होता है। विचार शक्ति से परे हो गए, अतः वे ये सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल को और अणु को भस्म कर सकते। कृष्ण असीम तथा ससीम को नियंत्रित करते हैं। असीम का मतलब वही सबसे बड़ा और ससीम का मतलब सबसे छोटा है, किंतु वे जगत से अलग रहते हैं। कौन? कृष्ण। नियंत्रण भी करते हैं और सबसे अलग भी हैं, सबसे अलग हैं। उनके योगम एवं या अचिंत दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि एक साथ ससीम तथा असीम को बस में रख सकते हैं। ससीम का मतलब छोटा, सबसे छोटा, और असीम का मतलब सबसे बड़ा। एक साथ दोनों नियंत्रण करते हैं, तो भी वे उनसे पृथक कहते हैं। जैसे जो मूर्ख लोग जो सोच भी नहीं पाते कि मनुष्य रूप में उत्पन्न होकर कृष्ण किस तरह असीम तथा ससीम को बस में कर सकते हैं, क्योंकि वे शुद्ध भक्त हैं, वे भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भगवान है। अतः वे पूर्णतया उनकी शरण में जाते हैं और कृष्ण भाव में मृत रहकर कृष्ण की भक्ति में अपने को व्रत रखते हैं। आगे सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफी मतभेद है, किंतु इन्हें भगवद्गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व को समझने के लिए करें तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण श्री भगवान है। यद्यपि वे झगड़ा धाम में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए थे, किंतु वे सामान्य व्यक्ति है नहीं। तो भगवान सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए कैसे? जैसे वसुदेव उनको जो है छिपा करके ले गए, तो भगवान क्या दिखा रहे हैं? कि वे डरते हैं कंस से, कंस को पता ना चले वसुदेव छिपा करके ले गए। तो ये क्या है? सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए। गोकुल में लीलाएं कर रहे हैं, तो कैसे लीलाएं कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं, मक्खन की चोरी कर रहे हैं, माता सीता उनको बांध देती है और खेलते हैं सखाओं के साथ, खेलते हैं, गौ में चराते हैं, ये सब क्या है? सामान्य मनुष्य है, प्रकट हुए थे, किंतु वे सामान्य व्यक्ति हैं नहीं। श्रीमद् भागवत में एक एक देश जब सनक आदि मुनियों ने शुद्ध गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा, श्रीमद् भागवत में उन्होंने पूछा, सनक आदि ऋषियों ने पूछा, सनक आदि ऋषियों ने पूछा, किससे पूछा? शुद्ध गोस्वामी से। और किसके बारे में पूछा? कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा, उन्होंने कहा शुद्ध गोस्वामी ने कहा क्या? कृतवाणी के कर्माणी सहरामेण के सभान अतिमर्त्यानि भगवान गोधा कपट मानुसहान। बहुत सुंदर शोध है कि भगवान ने जो है, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्हें अनेक अति माननीय कार्य किए। क्या मनुष्य की भांति क्रीड़ा करते हैं लेकिन अतिमर्त्यानी कर्माणी कृतवान, अतिमर्त्यानी कर्माणी कृतवान, अतिमर्त्यानी का मतलब मनुष्य को सोच भी नहीं सकता ऐसे अतिमर्त्यानी। एक तो मर्त्य कर्म होते हैं, मतलब जो मनुष्यों के सामान्य मर्त्यानी, अति मर्त्यानी कर्माणी है ना, कृतवान, अति मानवीय कार्य किए, अति मानवीय कार्य किए। आगे मनुष्य रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने धरातल करके दिखा दिया था। जब कृष्ण अपने पिता तथा माता वसुदेव तथा देवकी के समक्ष प्रकट हुए तो वे चार भुजाओं से युक्त थे। अब देखो कैसा आश्चर्य है कि बालक जब जन्मा तो कितने भुजाएं थी बालक की? चार भुजाएं थी बालक की, चार भुजाएं थी बालक की। और नग्न नहीं था बालक, वस्त्र धारण किए। बालक ने जन्म लिया, माता के गर्भ से बालक ने जन्म लिया, लेकिन कैसे जन्म लिया? वस्त्र धारण किए हुए और आभूषण, चार भुजाएं, प्रसन्न मुख, चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया। और फिर ये भी उनका एक गुण ही है, ये भी उनकी योग्यता है कि उन्होंने मनुष्य रूप धारण कर लिया। नग्न बालक मन में अभी चार भुजाओं का बालक था और सब कुछ टिप टॉप है। और फिर जो है एक नग्न बालक दो भुजाओं का बालक हो गए। अब शंख चक्र गदा पद्म में सब गायब हो गए और दो भुजाओं का नग्न बालक हो गया। बभूव प्राकृत शिशु, बभूव यानी बन गए, प्राकृत शिशु प्राकृत बालक। तो ये भी तो आश्चर्य की बात है जी, थोड़ी कि नहीं ये तो जो है मतलब उनके अंदर कोई कमी थी। ये भी उनका एक विशेष गुण है, किसी की दो भुजाएं हैं तो चार भुजाएं नहीं हो सकती, किसी की चार भुजाएं तो दो भुजाएं नहीं हो सकती। भागवत 10:3-46 में तो एक सामान्य शिशु एक सामान्य मानव बन गए, तो बन गए लेकिन वो है नहीं। बनना और होना अंतर है ना, तो कृष्ण है नहीं सामान्य शिशु या सामान्य मानुष, वो बन जाए तो ये उनका गुण है, जीवन का गुण है कि वो बन गए। तो बोलते हैं यहां पर भी ये इंगित करता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है, निजी गुण है, गुण है, बहुत बड़ा गुण है। सोचिए कि जो है ना कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मतलब चाहता करना, मान लो भारत का प्रधानमंत्री है तो कोई मजदूर का काम थोड़ी करेगा वो। कृष्ण जो है मतलब अनंत ब्रह्मांड में जो स्वामी है सभी मनुष्य का अभिनय करते हैं, ये भी गुण है। ये भी इनका बहुत बड़ा त्याग है, गौ में चरा रहे हैं, नंद भारती गौ चरा रहे हैं, जबकि क्या है अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है। तो क्या है उनका गुण है, गहराई से देखो तो गुण है, और गहराई से न देखो तो कहेंगे गौ में चराते हैं क्या, कैसे सकते हैं भगवान। किसी किसी व्यक्ति को देखे गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है, भारत का प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है? तो कोई व्यक्ति अपनी भौतिक बुद्धि सोचेगा गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है, ये जो सामान उठाता है, सामान ढोता है, रिक्शा चलाता है ना, भारत का प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है? कृष्ण जो है गौ में चराने वाले ब्रज में कैसे हो सकते हैं भगवान? लेकिन भगवान का गुण, ये भगवान का गुण है कि गौ में चराते हैं। तो गहराई जितनी गहराई से देखो तुम्हें गुण दिखाई देंगे है? और मूर्खता से अगर देखो तो क्या दिखाई देगा? कोई गुण नहीं है, सामान्य है, सामान्य से भी जीते हैं। तो कहते हैं कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। वो दिखा रहे हैं कि कंस डरे, कंस से छिप करके रहते हैं गोकुल में, कंस को पता नहीं चला कि कृष्ण का जन्म हुआ, छिप करके वहां से भाग गए। आगे भगवद गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया है कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए प्रार्थना की, तेन एव रूपेण चतुर्भुजेन। अर्जुन ने विश्व रूप दिखाना और विश्व रूप से बहुत ज्यादा भयभीत हुए, तो अर्जुन ने फिर क्या कहा? तेन एव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्र बाहो भव विष्णु मूर्ति। अभी आपकी हजार भुजाएं हैं, मैं बहुत डर रहा हूं, आप चार भुजाओं में बनी। इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन के प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्व मनुष्य रूप धारण कर लिया। फिर चतुर्भुज रूप में भी जो है अर्जुन ने फिर कहा कि नहीं इससे भी मुझे शांति नहीं मिल रही, आप दो भुजाओं में आइए। तो दो भुजाओं में आ गए कृष्ण। तब अर्जुन ने कहा हाँ अब मैं मतलब प्रकृतित हो गया हूं, अपने स्वभाव में आ गया हूं, स्वाभाविक मेरा जो है स्वाभाविक स्थिति मेरी हो गई है। तो रूपित है मानुसम रूपम, अर्जुन ने क्या कहा? मानुसम रूपम, आपका मनुष्य रूप देख करके मैं अपने स्वभाव में आ गया हूँ। आगे भगवान के ये विभिन्न गुण निश्चय ही सामान्य मनुष्य जैसे नहीं है। कौन ऐसा कर सकता है? दो भुजाओं, चार भुजाएं, चार भुजाओं से असंख्य भुजाएं, अनंत बाहुम, हजार भुजाएं नहीं, अनंत बाहुम, और फिर अनंत भुजाओं से फिर चार भुजाएं, चार भुजाओं से फिर दो भुजाएं। आगे कतिपय लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं, श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक 3:29-21 को ये सिद्ध करने के लिए उद्धृत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। अब श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, है? क्या अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वर्तितः सदा, परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। तो ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है, तो इससे उनको मौका मिलता है कि भगवान तो भी जो है सबके अंदर है, सबके अंदर है भगवान, तो अलग से कोई भगवान नहीं है। और कृष्ण को हम भगवान नहीं मानते, कि भागवत में तो ये लिखा है, भागवत में ये लिखा है अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा, मैं सब प्राणियों के हृदय में आत्मा है, परमात्मा के रूप में स्थित हूँ। तो फिर भगवान तो जो है सबके अंदर है, फिर बाहर नहीं हो सकते, अलग से नहीं हो सकते, कृष्ण भगवान नहीं हो सकते, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं, अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें। दर्शनाचार्य क्या बताते हैं इसकी व्याख्या, ना कि कृष्ण उपहास करने वाले अनधिकारी व्यक्तियों की व्याख्याओं से। तो मूर्ख लोग, ये भी मूर्ख लोग हैं, श्रीमद् भागवत के एक श्लोक को पकड़ लेते हैं। और श्रीमद् भागवत में कृष्ण की कितनी महिमा है, कितने गुण है, उनके रूप का भी वर्णन सब कुछ हुआ है, एक श्लोक को पकड़ लिया, ना हम कृष्ण को भगवान नहीं मानते, श्रीमद् भागवत में तो ये लिखा है कि भगवान तो सब जीवों के हृदय में ऐसे हैं। तो ये मूर्ख है। तो आचार्य लोग कैसे बताते हैं, जीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त सब अक्षरों में अपने अंत विस्तार परमात्मा के रूप में सर है। सब प्राणी के हृदय में जो परमात्मा है वो कृष्ण के क्या है, अंत है। जबकि वो जो है परमात्मा को भाई मान, ये सामान्य व्यक्ति क्या मानेगा कि भाई ये जो है श्रेष्ठ है, ये सब प्राणी के हृदय में स्थित है परमात्मा, वो श्रेष्ठ है। और कृष्ण तो सीमित है एक स्थान में, एक व्यक्ति है, तो कृष्ण तो सीमित है और वो परमात्मा सीमित है, तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन जीव गोस्वामी क्या कहते हैं कि नहीं, वो परमात्मा कृष्ण के अंश है, किसने अपना विस्तार किया, अपना श्वास विस्तार किया सब प्राणियों के हृदय में, तो श्रेष्ठ कौन है, कृष्ण श्रेष्ठ, कृष्ण श्रेष्ठ है। अतः कोई भी नवदीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अष्ट मूर्ति पर ही ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वो व्यसन मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। तो ये बात भागवत में लिखी है कि तम अवज्ञा माम मत्या कुर्त्यर्चा विडम्बनम, चर्चा की पूजा का केवल ढोंग कर रहा है मंदिर में और दूसरे प्राणियों का सम्मान नहीं करता। भगवत भक्तों में 3 प्रकार है, जिनमें से नव दीक्षित सबसे निम्न श्रेणी के हैं। नव दीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के अंदर विग्रह पर अधिक ध्यान देते हैं। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं किस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। क्या समझे, अन्य भक्तों का सम्मान नहीं करते, अच्छा विग्रह का सम्मान करते हैं, भक्तों का सम्मान नहीं करते, है ना। ये क्या है, नवदीक्षित भक्त है, ऐसे भक्त है। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं किस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए, इससे रक्षा नहीं होगी, असर विग्रह के रूप में भगवान जो है आपकी पूजा नहीं स्वीकार करेंगे, भक्तों का सम्मान नहीं करते हैं, और आप असर विग्रह की पूजा करते हैं, आप फूल चलाते हैं, लेकिन असर विग्रह के रूप में भगवान क्या मानते हैं, ये मुझको अग्नि के अंगारित क्यों दे रहा है, तो भगवान ही उसकी पूजा स्वीकार करते हैं। आगे भक्त को समझना चाहिए कि क्योंकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। इसे जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए जिसमें परमात्मा निवास करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक अतः प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उचित सम्मान, उचित सम्मान में ये हो सकता है कि भाई किसी का ज्यादा सम्मान करें, किसी का कम सम्मान करें, और किसी का आप संग ना करें दूर से ही, उसकी उपेक्षा करें, ये भी है। उसका आप संगति भी ना करिए, उसकी उपेक्षा करिए, ये भी हो सकता है। इस तरह से भी सम्मान होता है किसी का। आगे ऐसे में निर्देशित वादी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं, ये कहते हैं कि चूंकि भगवान सर्वत्र है तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक ही सीमित कर रहे हैं। बहुत लोग हैं अभी तर्क देते हैं, क्या देते हैं तर्क, कि भगवान अगर सब जगह है तो फिर मंदिर मंदिर क्यों जाते हो, भगवान तो सब जगह है, ये कहते हैं इंसान। यदि किसी सर्वत्र है तो चलो मंदिर में अक्सर देख रहे नहीं है। अब उनके तर्क का उत्तर क्या है, अगर सब जगह है तो क्या मंदिर में नहीं है, और मंदिर में आप उनके दर्शन कर सकते हैं और उनको प्रणाम कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, इसलिए भगवान जो है मंदिर में अपना दर्शन दे रहे हैं। सर्वत्र है लेकिन सर्वत्र आप भी देख सकते हैं उनको आगे। नेता सगुणवादी निर्विशेषवादी निरंतर लड़ते रहेंगे, किंतु कृष्ण भावन अमृत में पूर्ण भक्त ये जानता है यद्यपि कृष्ण भगवान है किंतु उसके साथ वे सर्व जाति भी है, जिसकी पुष्टि कर्म चिंता में हुई है। यद्यपि उनका निधि धाम गोलोक वृंदावन है और वे वही निरंतर वास करते हैं, किंतु वे अपनी शक्ति के विभिन्न अनुवृत्ति द्वारा तथा अपने स्वांस द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। गोलोक एव निवसति अखिलातम भूतो गोविंद मालिकोशम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में पूरी बात बताएंगे, गोलोक एव निवसति कि गोलोक धाम में ही निवास करते हैं, जब आते हैं प्रसिद्ध है तो गोलोक धाम से आते हैं। गोलोक एव निवसति अखिल आत्म भूतो, लेकिन समस्त प्राणियों के अंदर है, उन्हें अपना विस्तार किया है। तो प्रभुपाल का यहाँ का तर्क समाप्त हुआ और अभी कुछ समय है हमारे पास में, तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं, मैं प्रश्न हाँ बोली, हम लोग भी कृष्ण के अंश हैं लेकिन हम भिन्न अंश हैं, और जो परमात्मा है स्वांश स्वांश, तो कृष्ण के दो प्रकार के अंश हैं, एक तो स्वांश और दूसरे भिन्न अंश। हम जीव भिन्न अंश हैं कृष्ण के, तो हम भिन्न अंश होने के कारण बहुत ही अणु हैं, बहुत सूक्ष्म है, और हम इस शरीर में बन गए हैं कृष्ण की सेवा को छोड़कर के, हम आ गए इसमें बन गए हैं, लेकिन कृष्ण ने अपना अंश विस्तार किया है, स्वांश विस्तार किया है अपना परमात्मा के रूप में, तो ये परमात्मा कृष्ण से अलग नहीं है, ये परमात्मा कृष्ण से अलग नहीं है, ये परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, लेकिन वे जो है जीव की तरह कष्ट नहीं भोग रहे हैं, जीव की तरह माया से नहीं बंधे हुए हैं, वे माया के स्वामी हैं, कृष्ण माया के स्वामी है, हृदय के अंदर परमात्मा वो भी माया के स्वामी है, लेकिन कृष्ण अपना विस्तार किया है परमात्मा के रूप में, ताकि वे जीव को सही निर्देशन दें। अगर जीव जो है चाहता है कि भौतिक जगत में मैं सुख नहीं पा रहा हूं और मुझे सही दिशा चाहिए जहां मैं सुखी हो सकता हूं, तो हृदय के अंदर परमात्मा उसको सही दिशा देते हैं, और जब तक वो जीव सोचता है कि मैं यहां सुख भोग सकता हूं, तब तक जीव हृदय के अंदर परमात्मा है लेकिन वे प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसकी इच्छा में सहयोग दे रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं, गलत काम करने की भी अनुमति दे रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं, ये साफ़ यही कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं, जिम्मेदार तुम भी हो गलत काम कर रहे हो, तुम आप सुन रहे हैं। तो कृष्ण जो है मतलब परमात्मा के रूप में सब जीवों के साथ हैं, उनके मित्र की तरह हैं, लेकिन वो तब तक उसको दिशा नहीं देते हैं, सही दिशा नहीं देते हैं जब तक जीव नहीं चाहता है। जीव स्वतंत्र अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, भगवान ने स्वतंत्रता दी है जीव को, अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी स्वतंत्रता सौंप देता है भगवान को कि अब मैं आपके नियंत्रण में कार्य करूंगा, आप मुझे नियंत्रण कीजिए और मुझे सही दिशा दिखलाइए, मैं भ्रमित हूं, मैं अपना सुख नहीं जानता, मैं अपना कल्याण नहीं जानता, आप मुझे बताइए, तो हृदय के अंदर ही परमात्मा उसको मिला देते हैं किसी साधु से आचार्य, है ना, और उसको सही दिशा मिलती है। और कोई प्रश्न, मैं प्रश्न करूं, ठीक है मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो आज की तात्पर्य में भोपाल ने चर्चा की है कुछ ऐसे भक्तों की जो आचार्य ग्रह की तो पूजा करते हैं, आचार्य ग्रह की पूजा करते हैं लेकिन दूसरे प्राणियों का सम्मान नहीं करते हैं, तो उनकी आचार्य ग्रह की पूजा कैसी है, व्यर्थ है, आचार्य ग्रह की पूजा व्यर्थ है, इसलिए हमारे इस्कॉन में अत्य विग्रह की पूजा करने के लिए जो पुजारी नियुक्त किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, ज्यादा उन्नत, जब भक्ति में ज्यादा उन्नति करें, जब उनको ब्राह्मण दीक्षा मिल जाए तो उनसे आशा की जाती है कि उन्होंने भक्ति में ज्यादा अनुभूतियां प्राप्त कर ली हैं, है? तब वो अत्य विग्रह की पूजा करें। और जो कुछ जो लोग कृष्ण के मनुष्य लीलाओं को देख करके कृष्ण मनुष्य लीलाएं करते हैं है? और उसमें हर तरह की लीलाएं हैं है? जैसे कि गौ में चराते हैं और जो है कभी डर के भागते हैं, शत्रु के सामने डर के भागते हैं, ऐसी लीलाएं। तो इन लीलाओं को देख करके जो मूर्ख लोग हैं वो कृष्ण को क्या मानते हैं, साधारण मनुष्य मानते हैं। तो कृष्ण को क्या इस बात की चिंता होती है कि वो नहीं, वो मुझे माने, उनको नहीं, क्यों 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 चिंता नहीं होती? जैसे उदाहरण दिया मैंने प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री को चिंता थोड़ी होती है ये कितने मूर्ख लोग हैं, वो जो है नहीं मानते हैं कि प्रधानमंत्री है। कितने मूर्ख हैं वो, कहे मैं नहीं मानता कि कोई भारत का प्रधानमंत्री है, अगर हो तो मेरे सामने बुलाओ। कोई मूर्ख कहे कि मैं नहीं जानता भारत का कोई प्रधानमंत्री, अगर हो तो मेरे सामने बुलाओ तब मैं मानूंगा। तो क्या प्रधानमंत्री आएंगे कि भाई मानो तुम, मैं हूं प्रधानमंत्री तो कृष्ण भी है, कृष्ण कह रहे हैं मूर्ख लोग हैं, मुझे नहीं मानते। लेकिन दूसरी बात और भी है, एक दूसरा पक्ष भी है कि जो ब्रजवासी हैं, जो कृष्ण के बहुत निकट हैं, वे भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते, लेकिन उनको मूर्ख नहीं कहा है भगवान ने। जो ब्रजवासी हैं, कृष्ण के माता पिता हैं, उनके सखा हैं, वे भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते, वे अपना पुत्र मानते हैं, अपना सखा मानते हैं। तो उनके लिए ये शब्द नहीं भगवान ने प्रयोग किया है, उनकी निंदा यहाँ पर नहीं हुई है, आप सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण की योग माया कार्य कर रही है। योग माया जो है कृष्ण के ज्ञान को ढकती है और वे नहीं समझ पाते कृष्ण परमेश्वर है, इससे वो कृष्ण के लिए निकट आते हैं, कृष्ण को निकट आते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनकी प्रेम की प्रगाढ़ता और बढ़ती है कि कृष्ण मेरा पुत्र है, कृष्ण मेरा मित्र है, सखा है, तो प्रेम की प्रगाढ़ता बढ़ती है। तो ये नहीं सोचना है कि यशोदा है, ये भी तो मूर्ख हैं, ये भी कृष्ण को नहीं मानते हैं भगवान, ये भी अपना पुत्र मानते हैं, ये सब मूर्ख हैं, इनको नहीं है। ये महामाया के प्रभाव में व्यक्ति नहीं मानता है कृष्ण को भगवान, तो भगवान से दूर जाता है। महामाया जो है कृष्ण के ज्ञान को ढकती है और उससे व्यक्ति कृष्ण से और दूर जाता है, और योग माया कृष्ण के ज्ञान को ढकती है जिससे व्यक्ति कृष्ण की ओर निकट आता है। तो कृष्ण माता सीता को दो बार अपना मुख में विष्णु दिख रहा है, मुख में विष्णु दिख रहा है, तो और बड़ा आश्चर्य है। अर्जुन को तो जो है मतलब कृष्ण ने अपना विराट शरीर दिखलाया है, मुख के अंदर पूरा विष्णु, और कितना बड़ा, पूरा बड़ा, ये तो और बड़ा आश्चर्य है। ये माता यशोदा जो है चकित हो गई, कृष्ण फिर जो माया से फिर से भुला दिया, क्योंकि कृष्ण कहते कि माता के प्रेम में बाधा पड़े, क्योंकि कृष्ण को कहते हैं हाँ बालक का प्यार चाहिए, वो चाहते हैं, कृष्ण चाहते हैं। तो कृष्ण जो है अपने योग माया के द्वारा उनके ज्ञान को ढके हुए हैं जिससे कि वे कृष्ण से प्रेम कर सके। हाँ जी, दो बार, एक बार तो स्तन पिला रही थी, स्तन पी करके कृष्ण ने दबाई ली तो माता ने देखा मुख के अंदर, और दूसरी बार क्या, कब मिट्टी खाई थी, है ना, जब माता ने डांटा कि तुमने मिट्टी खाई है, नहीं मां मैंने मिट्टी नहीं खाई, तो मुंह खोल के देखा अपना, तो जब दिखाया तो बार ऐसा हुआ। तो इस तरह से जो है योग माया से भगवान जो है ज्ञान को ढकते हैं, तो उससे भक्त जो है भगवान के निकट आते हैं, तो वो अज्ञान नहीं माना जाता है, इसे अज्ञान नहीं माना जाता है कि माता सुधा अज्ञान में है, ज्ञान ढका हुआ है उनका, वो अज्ञान की स्थिति नहीं है, लेकिन इनकी स्थिति अज्ञान की है, क्योंकि ये जो है कृष्ण से नफरत करते हैं, निंदा करते हैं और जो है उपहास करते हैं कृष्ण का, तो ये जो है अज्ञान है, इनके लिए मूढ़ा शब्द का प्रयोग किया है। तो प्रभुपाद भी जो है इसी के बल पर मूढ़ा शब्द का प्रयोग करते थे, अंग्रेजी बोलते हैं रास्कल। तो ये गीता के जो आचार्य हैं वो गीता के शब्दों का प्रयोग करते हैं, और जो है यथा रूप, ये यथा रूप गीता है, कोई कहे कि नहीं नहीं आप तो निंदा कर रहे हैं, साधु को निंदा नहीं करना चाहिए, भगवान बोल रहे हैं तो फिर हम क्या बोलें। ये नहीं 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 आप तो साधु हैं, आपको तो नहीं बोलना चाहिए, आपको निंदा नहीं करना चाहिए। जब कृष्ण कह रहे हैं मूढ़ा, तो फिर हम क्या कहें? इसमें फिर ये नहीं 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 हाँ साधु को तो जो है मतलब अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ये गाली गाली का प्रयोग नहीं करना चाहिए साधु को। तो ऐसा नहीं है। और कृष्ण के जितने शब्द हैं ये कल्याण के लिए हैं, कृष्ण के जितने शब्द हैं ये ज्ञान देने के लिए हैं। अगर अज्ञान की निंदा करें, आप कुछ भूल कर रहे हैं और आपकी हम कुछ निंदा करते हैं कि ऐसी आप भूल कर रहे हैं, तो आपकी भलाई के लिए, तो गीता में कृष्ण जितने शब्द हैं वो कल्याण के लिए हैं, भलाई के लिए हैं। ठीक है, धन्यवाद। श्रीमद भगवद गीता की जगत गुरु श्री स्वरूपाद की जय।